श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे। सब भक्तों की जय जयकार, सब भक्तों की जय जयकार, गुरु और गौरांग की जय जयकार। नमो विष्णु बदाया कृष्णा प्रश्नाय भूतले। श्रीमत भक्ति वेदांत स्वामी के नाम ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात सरकार। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजनसंवर्धय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमाओं विष्णु पदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले। श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशकाल्य। मिलकर सारे बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुनि। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नेष्ट। मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, बालकों में बालिकाओं, आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद और नौमा अध्याय, क्षमा कीजिए, नौमा श्लोक द्वितीय अध्याय पहला स्कंद, पहला स्कंद चतुर्थ स्कंद। आप सब मेरे पीछे बोलने का प्रयास करें, श्रोयाताम सुनो ब्रह्म ऋषयः। ये ब्राह्मणों के मध्य ऋषि लोगों ने मुझको सदेवः हे देवताओं स अप्रियः हे अग्निदेव साधुनां सज्जनों के भ्रमुवतः बोलते हुए वृतम व्यवहार आचार ना नहीं अज्ञानात् अज्ञान से न च तथा नहीं मत्सरात् द्वेष से। श्रूयताम् ब्रह्म ऋषयो मे देवा सहागण्या साधुनां भुवतो वृत्तम् न अज्ञानं च मत्सरात् श्रूयतां ब्रह्मऋषयो मे स देवः सः प्रियः साधूनां भ्रूवतो वृत्तम् न अज्ञानं च मत्सरा कृपया मेरे पीछे बोलिए हे समस्त उपस्थित ऋषियों ब्राह्मणों तथा अग्नि देवों ध्यान पूर्वक सुनो क्योंकि मैं शिष्टाचार के विषय में बोल रहा हूं। मैं किसी अज्ञानता या ईर्ष्या से नहीं कह रहा। तात्पर्य हमारे परम दरणीय प्रातः स्मरणीय अचनीय वंदनीय अति दयालु परम कृपालु जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी महाराज द्वारा शिव के विरुद्ध बोलते हुए दक्ष ने यह कहकर सभा को अत्यंत चतुरतापूर्वक शांत करना चाहा कि वह सज्जनों के आचार शिष्टाचार के विषय में बोलने जा रहा है। क्योंकि इससे सभा में उपद्रव होने की आशंका थी और लोग अप्रसन्न हो सकते थे क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि कोई अभद्र पुरुष भी अपमानित हो। दूसरे शब्दों में उसे यह पता था कि मैं शिव के विरुद्ध बोल रहा है जो निष्कलंक थे। यहां तक ईर्ष्या द्वेष की बात है, मैं पहले से ही शिव से द्वेष रखता था, फलतः उसने अपने द्वेष को प्रकट नहीं होने दिया। यद्यपि मैं इस प्रकार बोल रहा था जैसे उसे कुछ ज्ञात ना हो, किंतु यह कहकर कि मैं किसी ईर्ष्या द्वेषवश नहीं बोल रहा, अपनी बात को छिपा लेना चाहता था। नमः ओम विष्णु पदाय कृष्णा प्रश्नाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारने। मेरे प्यारे हरिभक्तों व माताओं, जीवन का जो उद्देश्य है वो केवल एक ही है, वह है भगवत प्राप्ति, श्री कृष्ण प्रेम। और कोई हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। अगर मैं कुछ और समझता हूं मेरे जीवन का उद्देश्य, तो वह मेरे दुष्ट मलिन मन की उपज है। कृष्ण प्रेम को पाने के लिए हमें निर्मल होना पड़ेगा। मेरे जितने भी दोष हैं उनका मुझे अंत करना पड़ेगा। जब तक मेरे में दोष बने रहे तब तक मुझे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, मुझे कृष्ण नहीं मिल सकते। तो ये दिव्य भागवत, इसकी रचना भगवान ने, भगवान वेद व्यास ने की हम सब जीवों के कल्याण के लिए, फिर इसका पाठ उनके महान पुत्र सुखदेव महाराज ने किया प्रक्षित महाराज के सामने। तो यहां सब ये दिव्य बातें आ रही हैं। दक्ष, पहले मैंने दो दिन पहले जब प्रवचन किया तो दक्ष की बातें की थी। दक्ष का अर्थ है जो संतान उत्पत्ति करने में बड़ा दक्ष है, निपुण है। चाहे इस युग में या पहले युग में या किसी भी युग में, अगर कोई भक्त नहीं है भगवान का, चाहे वो कहीं भी है, चाहे वो स्वर्ग लोक में है, तो वह दुर्गुणों से, दोषों से भरा रह सकता है, उसमें दोष बने रहते हैं। दक्ष जो है शंकर भगवान से द्वेष करता था, द्वेषी था। क्यों द्वेषी था? क्योंकि शंकर भगवान का जो जैसे वस्त्र पहनते हैं, जैसे वो रहते हैं, शंकर भगवान जो है वो जैसे भी रहते हैं वो शुभ है, महान है। लेकिन दक्ष जो संतान उत्पत्ति करने में निपुण है, वो शंकर भगवान की महानता को नहीं समझ सका। उसने यहां बड़ा चतुर बनने का प्रयास किया। एक दोहा है बड़ा सुंदर हिंदी में, चतुराई चूल्हे पड़े भट्टी पड़े आचार, ऐसी भगवत भक्ति बिना चारों वर्ण चमार। अभी दक्ष बड़ा चतुर है लेकिन भक्त नहीं है, भक्त नहीं है, उसकी चतुराई कुछ नहीं, उसको फल मिल रहा है, आगे भी मिलेगा। पर वो क्या बड़ा चतुर बनने का प्रयास कर रहा है, है ना, बड़ी चतुराई से, ताकि वो सभा जो है उसमें कोई अभद्र व्यवहार ना हो, सभा में कोई अशांति ना फैले। तो ये भी इस पॉइंट पर भी प्रभुपाद जी ने चर्चा की है। प्रभुपाद जी ने कहा है कि अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं ना, हम भौतिक दृष्टि से बड़े विद्वान हैं, बड़ी डिग्री है मेरे पास, पर अगर मैं भक्त नहीं हूं तो डिग्री किसी का होंगे नहीं, सब बेकार। पर अगर कोई डिग्री है कुछ नहीं उसके पास और वो भक्त है तो सब कुछ है। इस बात की पुष्टि महाप्रभु ने भी की है। एक संदर्भ में प्रभुपाद जी ने कथा सुनाई है, पहले भी आपको सुनाई थी, इस बात में फिट होती है। एक बार एक वैज्ञानिक नौका विहार करना चाहता था, उसे अपने विज्ञान का, अपनी विद्युता का बड़ा अभिमान था। अगर कोई भक्त नहीं है, भक्ति माता की कृपा नहीं है, चाहे वो कोई भी है, अहंकार आ ही जाता है। ब्रह्मा जी में भी आ गया था, ब्रह्मा जी कृष्ण की परीक्षा ली थी उन्होंने, ब्रह्म विमोह लीला। अगर ब्रह्मा और शिव नहीं बचे उन पर हमारी गिनती किसमें है। पर हरिदास ठाकुर भक्त थे, बिल्कुल अहंकार उनमें नहीं, और जन्म भी अच्छा नहीं था, ब्राह्मण घर में नहीं जन्मे थे, यवन घर में जन्मे, लेकिन शुद्ध भक्त भगवान के। तो ये वैज्ञानिक जो है, ये बड़ा अभिमानी था, बड़ा अहंकार था उसको अपने विद्वता का। तो नाविक उसने बुलाया नौका विहार करने की इसकी इच्छा हुई। नाविक आ गया, कहते भैया हम समुद्र की सैर करना चाहते हैं। कहते आइए साफ बैठिए। नौका पर बिठाया उसको, तो बेचारा चप्पू चलाने लगा, नौका थोड़ी सी आगे गई। तो जो अहंकारी है ना, वो अहंकार पूर्ण बातें करता ही करता है, उसका अहंकार उसकी बातों में झलकता है, चाहे वो कितना प्रयास करे। अभी जैसे दक्ष जी भी प्रयास कर रहे हैं, बड़े तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे तात्पर्य में लिखा है, वो छुपा रहे हैं असलियत को। तो उसने, उस वैज्ञानिक ने पूछा उस नाविक को, भैया तुम्हें कुछ फिजिक्स का ज्ञान है? उसने कहा, साहब मैं तो बचपन से नौका ही चलाता हूं, मैं कुछ नहीं जानता। कहते हैं कि वो तेरा 25% जीवन बेकार, चुप रहा बेचारा वो। नौका थोड़ी और आगे बढ़ी, और देखो एक कुत्ते अनपढ़ मूर्ख, ये वैज्ञानिक पढ़ा लिखा मूर्ख है। एक प्रश्न जब किया तो उसने कहा बेचारा मैं बचपन से नौका चलाता हूं, कुछ जानता नहीं। फिर प्रश्न ऐसे कर माती, अरे तुम्हें फिजिक्स का ज्ञान, केमिस्ट्री का कोई ज्ञान है? उन्होंने कहा, साहब मैंने आपको कहा मैं तो अनपढ़ हूं, 50% तेरा जीवन बेकार। वो चुप बेचारा। नौका और आगे बढ़ी, वो बड़ा इंजॉय कर रहा है, बड़ा देख रहा है समुद्र, नौका में विहार कर रहा है। नौका अंदर चली गई समुद्र के काफी, अंदर जाकर हेलोरे लेने लगी, नीचे ऊपर होने लगी। कहता भाई ये क्या हो रहा, नौका बड़ी हिल रही है, नीचे ऊपर हो रही है। उसने ऐसे देखा, कहते साहब ऐसा है, ऐसा लगता कि समुद्र में तूफान आ रहा है। कहते फिर कि आप तैरना जानते हो? कहते बहुत नहीं मैं जानता। कहते साहब 100% जीवन आपका बेकार, 100 कुछ हमने अर्जित कर लिया, पर अगर भक्त नहीं बने तो कुछ नहीं बने। इसलिए हम सबको जो इधर खड़े हैं ना, दो भाई हैं, गौर निताय कलयुग के ये ठाकुर हैं। हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी ने कहा हम सबको इनकी शरण लेनी चाहिए, ये बड़े दयालु हैं, दया के सागर हैं। परम करुणा पाहु दुई जना निताय गौर चंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। अभी इनकी ऐसी लीलाएं हम मूर्खों को शिक्षा देने के लिए। एक बार दक्षिण भारत में गौर भगवान गए थे, स्मार्त जो बड़े विद्वान ब्राह्मण, बड़ी विद्वता, संस्कृत के बड़े ज्ञाता, संस्कृत श्लोकों का उच्चारण करने वाले, सारी गीता कंठस्थ, और कुछ हंस रहे हैं। भगवान गडकर के वाजी साहब जानते हैं, उनके पास पहुंचे, भाई आप लोग क्यों हंस रहे हो? ये देखो ये एक ब्राह्मण है, गीता इसने हाथ में पकड़ी है, जैसे ये उसको पढ़ रहा हो, पढ़ना तो ये जानता नहीं। उनकी बातों से क्या झलक रहा है कि उन्हें अपनी विद्वता का अहंकार है, इसलिए हम हंस रहे हैं। तो परम पिता कली पावन अवतार गौर भगवान उसके पास गए, और भगवान ने क्या देखा? उसने गीता पकड़ी है पर उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। चेहरे के गौर भगवान पूछते हैं, भैया तुम क्यों रो रहे हो? मेरे गुरुजी ने कहा था बेटा गीता पढ़ना, पर मैं अनपढ़ हूं इसलिए रो रहे हो? फिर कहते मैं अपने गुरुजी से सुना था कि भगवान श्री कृष्ण इतने भक्त वत्सल हैं और गीता पर भी वो चित्र है भगवान का, सारथी बने हुए हैं भगवान, और ये दिल्ली है, पार्थ सारथी यही बने थे भगवान, अर्जुन का रथ हांका था, बोलो पार्थ सारथी भगवान की। तो मुझे ये सोच आ रही है कि देखो भगवान इतने भक्त वत्सल, इतने दयालु, सबके स्वामी, सबके मालिक, सब कारणों के कारण अपने भक्त के सारथी बन गए, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। भगवान ने यह भी उसको पूछा, क्या ये तेरे पर तेरे को हंस रहे हैं इसलिए तो रो रहे? कहते नहीं, भक्त को उन चीजों की क्या परवाह है, हम भक्त नहीं है इसलिए हम परवाह करते हैं, कोई हमारे लिए हंस रहा है या कोई हमें क्रिटिसाइज कर रहा है, भक्तों को क्या है? जब उसने ये कहा कि भगवान सारथी बने और ये स्मरण होने के कारण मुझे रोना आ रहा है, तब जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ, वही कृष्ण ही तो गौर हैं, उन्हें कहा कि तुम ही असली गीता के पढ़ने वाले हो, ये सब पाषंडी खड़े हैं यहां पर, जिन्हें सारी गीता कंठस्थ, वो पाषंडी विद्वान पाषंडी अनपढ़ को गीता का पढ़ने वाला गौर भगवान ने घोषित कर दिया। ऐसा क्यों? गीता का मर्म क्या है, गीता का सार क्या है? भाव और भक्ति, इसको भाव और भक्ति प्राप्त हो गई है अनपढ़ को, और उनको सारी गीता कंठस्थ होने पर भी भाव और भक्ति नहीं मिले।
भगवान तो शिक्षा दे रहे हैं, पर अगर मैं नहीं लूं तो इसमें भगवान का क्या दोष है। तो ये साइंटिस्ट जिसे अपनी विद्वता का बड़ा अहंकार है, तो क्या तुलना की है प्रभुपाद जी ने यहां पर नौका चलाने का अर्थ, वो भक्त है भगवान का, नाविक भक्त है। पर ये वैज्ञानिक विद्वता तो बड़ी है लेकिन भक्त नहीं है, तैरना नहीं जानता, तो वह डूब गया वहां। तो दक्ष बड़े दक्ष हैं, बड़े निपुण हैं संतान उत्पत्ति में, तभी तो हजारों बच्चे पैदा किए उन्होंने। नारी जी ने सब पर कृपा की, नारी जी को भी श्राप मिल गया था इनकी कृपा से, नारी जी को बड़े बुरे शब्द इन्होंने कहे थे। तो लेकिन भक्त नहीं बन पाए। अब ये एक उदाहरण इसी कलयुग में है, ठाकुर भक्ति विनोद महाराज का। ठाकुर भक्ति विनोद महाराज के पिछली बार भी हमने कहा था 13 बच्चे थे लेकिन साथ में भक्त भी थे। उनकी भक्ति उनकी लेखनी से, उनके कार्य से, उनके शब्दों से झलकती है, बिल्कुल अहंकार शून्य। कोई अहंकार ठाकुर भक्ति विनोद में नहीं था, और उन्होंने जितने ग्रंथ रचे उन सब में जीवों का मंगल उन्होंने चाहा है। भक्ति विनोद ठाकुर सब जीवों का मंगल चाहने वाले थे। अभी यहां पर थोड़ा सा दक्ष जी का अपमान हो गया, वो वर्णन में आया है, शंकर और ब्रह्मा जी का पद दक्ष से ऊपर है। ब्रह्मा और शिव वैसे प्रभुपाद जी भी वर्णन कर रहे हैं, शंकर भगवान की उत्पत्ति तो हुई ब्रह्मा जी से, लेकिन शंकर भगवान का पद ब्रह्मा जी से भी ऊपर है। अगर उनका भेष अच्छा नहीं है तो कहा है ना कि एक बार एक घटना घटी। घटना इस प्रकार है कि महाराजा जनक की सभा में अष्टवक्र गए। अष्टवक्र उनको 8 कुब थे, कैसा शरीर था उनका, लेकिन बड़े महान विद्वान थे। जब वो वहां गए तो महाराजा जनक की सभासद सभा के लोग उनसे घृणा करने लगे, कैसे, क्योंकि शरीर उनका अच्छा नहीं। शरीर अच्छा होने या नहीं होने से क्या होता है, आदमी की भावना अच्छी होनी चाहिए। तो अष्टवक्र ने देखा है लोग जो है मेरे शरीर से घृणा कर रहे हैं, मेरे से घृणा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जनक जी को कि महाराजा जनक, मैंने सोचा कि तुम्हारी सभा में सब लोग तेरी तरह विराजते हैं, पर ये तो सारे चमार हैं, एक दूसरों की पहचान शरीर से करते हैं। किसी के भाव और भक्ति से पहचान होती है। अगर हम शरीर को बड़ी क्या कहते हैं महानता प्रदान करते हैं तो फिर हम चमार की संगता उसमें संख्या में संगीता में आ जाते हैं। हमें आत्मा, प्रभुपाद जी ने एक जगह श्लोक कोट किया है, विद्या बिने संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तने शून्य शिव शपाकेच पंडिता समदर्शना। जो वास्तव में पंडित है, जो वास्तव में ज्ञानी है, वो एक विद्वान को और एक ब्राह्मण विद्वान को, एक गाय को, एक हाथी को और एक चंडाल को और एक कुत्ते को एक समान देखता है। वो बाहरी आडंबर नहीं देखता, इसके अंदर आत्मा को देख रहा है। आत्मा जो है सब में एक समान है, लेकिन जो दूसरे की पहचान उसके शरीर से करता है वो चमार है। तो दक्ष महाराज जो है निपुण तो बड़े हैं संतान उत्पत्ति में, लेकिन जैसे यहां तात्पर्य में कहा है किंतु यह कहकर कि मैं किसी ईर्ष्या द्वेषवश नहीं बोल रहा, अपनी बात को छिपा लेना चाहता था दक्ष। ईर्ष्या भी थी द्वेष भी था। एक वर्ष ने प्रभुपाद जी को एक प्रश्न पूछा, एक भक्त ने विदेश में प्रश्न पूछा कि प्रभुपाद हम सुबह जल्दी उठते हैं, मंगल आरती आते हैं, मंगल आरती अटेंड करते हैं, जप करते हैं, सेवा करते हैं, भागवत प्रवचन में आते हैं, सायंकाल की आरती अटेंड करते हैं, भगवत गीता का प्रवचन अटेंड करते हैं, तो प्रभुपाद जी हम कैसे समझे कि हम आध्यात्मिक पथ में प्रगति कर रहे हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न किया। श्री प्रभुपाद ने क्या कहा? कहते दो बातें, एक ईर्ष्या और दूसरा काम। ईर्ष्या या तो कम हो रही है, समाप्त होना तो बड़ी दूर की बात है, काम विकार कम हो रहा है, ईर्ष्या या कम हो रही है या समाप्त हो चुकी है, काम विकार कम हो रहा है या समाप्त हो गया है, तो उसे यह समझना चाहिए कि मैं आध्यात्मिक पथ में आगे बढ़ रहा हूं। अगर मेरे अंदर यह काम विकार और ईर्ष्या भरी रही तो भक्ति पथ में मैं आगे नहीं बढ़ रहा। मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, अगर मेरे मन में ईर्ष्या रहती है तो ईर्ष्यालु आत्मा को सांप का जन्म मिलता है अगला, क्योंकि सांप की योनि जो बड़ी ईर्ष्या करते हैं दूसरों से उनको सांप की योनि मिलती है। और कामुक व्यक्तियों को जो काम वासनों की तृप्ति में लगे हुए हैं उनको कुत्ते की योनि मिलती है। कुत्ता काम वासनों की तृप्ति में बड़ा निपुण है। तो मनुष्य शरीर ये चीजें हैं मनुष्य शरीर में, क्योंकि मैंने पूर्व योनियों में इन योनियों से गुजर के मेरी आत्मा शरीर में आई, मेरे अंदर अभी ईर्ष्या भी बनी पड़ी है, काम भी है, बड़े दोष हैं। खैर दो बातें जो विशेष प्रभुपाद ने कही, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मद मत्सर ईर्ष्या दंभ कपट बहुत कुछ है। जब तक दोष बने रहेंगे तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, मुझे आपको इनको उनको हम सबको यह ध्यान रखना चाहिए क्या ये दोष मेरे से निकले या नहीं निकले, क्योंकि मेरी आत्मा निकलने की ओर आगे बढ़ रही है। इस शरीर से आत्मा निकलने की ओर आगे बढ़ रही है, मृत्यु मेरी निकट आ रही है। जैसे प्रभुपाद बड़ी कृपा करके समझाते हैं, कल का दिन मेरे जीवन से समाप्त हो गया, मर गया। मृत्यु ये नहीं है कि आत्मा जब शरीर को निकलेगी, आदमी की रोज मृत्यु हो रही है। उदाहरण दिया है गुरुदेव ने, प्रभुपाद ने, बच्चे का छह महीने का बच्चा हो गया, बड़े खुश होते हैं, छह महीने उसकी मृत्यु हो गई, उसके जीवन से मर गए, छह महीने और मृत्यु के वो निकट आ गया। तो हम सब मृत्यु के निकट आ रहे हैं, लेकिन मुझे प्रयास करके ये जो दिव्य मार्ग प्रभुपाद ने बड़ी कृपा करके सारे संसार को, कोई भेदभाव नहीं रखा, संत भेदभाव नहीं करते, हम भेदभाव करते हैं, क्योंकि मेरा मन भेदभाव से भरा पड़ा है। जैसे प्रार्थना की है ना उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर ने,
गुरुदेव से हे गुरुदेव
इसको टच मत करो, बटन टच हो जाते,
मुझ पर ये कृपा करो मुझे तुरंत से ज्यादा विनम्र बनाओ। मेरे में विनम्रता क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने हर योनि में इंद्रियों का तर्पण किया और मनुष्य योनि में ही मैं इंद्रियों के तर्पण में लगा हूं बस, इसलिए मेरी ये देहात्मक बुद्धि बन गई है। मैंने अपने आप को ये देह समझ लिया है। शुद्ध भक्त भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं मुझे तुरंत से ज्यादा विनम्र बनाओ। फिर कहा सकले समाना, मेरे पर कृपा करो मैं सबका सम्मान करूं। हम अपमान कर देते ना एक दूसरे का, कारण देहात्मक बुद्धि अपने आप को शरीर समझ रखा है। मेरे को ये शक्ति दो, सकले समाना करीते शक्ति देहो नाथा यातायात, मेरे को ये शक्ति दो आप कि मैं सब जीवों का सम्मान करूं, किसी का अपमान ना करूं। अभी एक बार मुझे घटना याद आई यहीं दिल्ली की। यहां एक मंदिर है दक्षिण भारत वालों का, दक्षिण भारत वालों का मलाई मंदिर कुछ ऐसा नाम है उसका, पहाड़ी के ऊपर। तो हमने ये सुना कि वहां पर वो जो शिवलिंग है वहां पर नागदेव आके बैठ जाते हैं। तो एक अमेरिकन भक्त थे, मैंने कहा चलो भाई ऐसी सी बात है। तो दोनों चले गए वहां पर मंदिर में गए, मैंने जाकर शंकर भगवान को प्रणाम किया, उसने नहीं किया, नाग नुक तो हमको दिखे नहीं, हम वापस बाहर आ गए। जैसे हम बाहर आए तो वो कहता है मेरे को भक्त, कहते वाई यू पेड योर ओबेसेंसेस टू लॉर्ड शिवा, शंकर भगवान को तूने प्रणाम क्यों किया? मैंने कहा वाई नॉट, क्यों नहीं? कहते कि प्रभुपाद सेज दैट वी शुड नॉट पे अवर ओबेसेंस टू लॉर्ड शिवा। प्रभुपद कहते हैं कि हमें शंकर भगवान को प्रणाम नहीं करना चाहिए। मैंने उसके बाद सुनी, मैं चुप रहा, मैं आ गया प्रभुपाद के पास। मैंने प्रभुपाद जी को पूछा, मैं प्रभुपाद आपने ये कहा कि शंकर भगवान को प्रणाम नहीं करना है, किसने कहा? ये मुझे ध्यान नहीं प्रभुपाद एक शब्द इस्तेमाल करते थे ऐसे लोगों के लिए, रास्कल कहा या नहीं कहा, इस शब्द का प्रयोग करते थे प्रभुपाद बहुत ज्यादा, उनके लेक्चरों में सुनता हूं। प्रभुपाद कहते थे एनी वन हु इज नॉट ए डिवोटी इज ए रास्कल, बस वन हु इज नॉट ए डिवोटी ऑफ कृष्णा इज ए रास्कल, जो कृष्ण भक्त नहीं है, रास्कल का मतलब मूर्ख गधा। पता नहीं इस शब्द का इस्तेमाल किया या नहीं किया। प्रभुपाद क्या कहते हैं ये लोग, दे कोट मी, प्रभुपाद सेज लाइक दिस, प्रभुपाद सेज लाइक दैट, बट आई नेवर सेज लाइक दिस एंड नेवर सेज लाइक दैट। ये मेरे को मेरा नाम लेकर कहते हैं प्रभुपाद ये कह रहे हैं, प्रभुपाद ये कह रहे हैं, प्रभुपाद वो कह रहे हैं, पर मैं ना ये कहता हूं ना वो कहता हूं, ये अपनी तरफ से ही बोलते हैं लोग। तब प्रभुपाद ने शब्द क्या कहे कि शंकर भगवान को प्रणाम क्या, वैष्णव को हम सब वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे ये भी प्रभुपाद ने कहा था, एक बार दो भक्त लड़ रहे थे आपस में, झगड़ा हो गया, एक दूसरे को कहता है यू कैनॉट ऑफेंड ए वैष्णव, तुम वैष्णव के प्रति अपराध नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद जी ओवरहर्ड, प्रभुपाद ने सुन ली ये बात, प्रभुपाद पहुंच गए, कहते हु इज क्लेमिंग हु इज ए वैष्णव, यू आर क्लेमिंग यू आर वैष्णव, टू बी वैष्णव इज वेरी रेयर, तुम अपने आप को वैष्णव कहते हो, अरे वैष्णव बनना बहुत कठिन है, अगर मैंने ये भेष धारण कर लिया तो मैं वैष्णव बन गया ना, जब तक मेरे हृदय से काम विकार और द्वेष विशेषकर जो प्रभुपाद ने कहे ये नहीं निकलेंगे, मेरे मन में विनम्रता नहीं आएगी, मेरे मन में कृष्ण प्रेम का उदय नहीं होगा, और अगर ये उदय नहीं हुए तो बाकी बुराइयां तो हैं ही, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार तो हैं ही, क्योंकि इनकी उपस्थिति में ये नहीं आ सकते, और जब ये आ जाए तो ये काम विकार और द्वेष नहीं रह सकता। तो महादेव के लिए भी प्रभुपाद ने कहा वैष्णव को हर जीव का सम्मान करना चाहिए, जो कि शुद्ध भक्त भक्तिविनोद ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं। भक्तिविनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि गुरुदेव मुझे विनम्र बनाओ और मुझ पर यह कृपा करो कि मैं सबका सम्मान करूं, ऐसी मुझ में शक्ति दो ताकि मैं सब जीवों का सम्मान करूं। तो सब जीवों का सम्मान करने से क्या होगा, तभी तो गाई वो हरि नाम सुखे, फिर मैं बड़े सुखपूर्वक भगवान का नाम ले सकूंगा, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम राम। अगर मैंने सुखपूर्वक भगवान का नाम लिया तो फिर क्या होगा, अपराधा हई देहांत, मेरे अपराध समाप्त हो जाएंगे। आज मैं नाम तो जप रहा हूं लेकिन अपराध मेरे समाप्त नहीं हो रहे, कारण मैं अपराध युक्त नाम ले रहा हूं। तो अपराध जब समाप्त होंगे ना तभी सुखपूर्वक नाम गाया जाएगा, और जब सुखपूर्वक बड़ा आनंद लेंगे हम नाम जपने में, तब मेरा मन विषय विकारों से हट जाएगा, ईर्ष्या द्वेष मेरे मन से निकल जाएंगे, सारी गंदगी समाप्त हो जाएगी और मुझे श्री श्री गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु राधा कृष्ण के श्री चरणों में स्थान की प्राप्ति होगी, नहीं तो यह स्थान उनके चरणों में नहीं मिल सकता। तो प्रभुपाद कृपा से हम सबको देखना चाहिए अपने अंदर, क्या मेरी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है या नहीं हो रही, आयु में तो प्रगति हो रही है, क्या आध्यात्मिक प्रगति मेरी हो रही है या नहीं हो रही। अभी जैसे हम कल गए थे, एक शिष्य था कपिल मोहन को 26 साल अवस्था थी उसकी, श्री छोड़ दिया और उसकी बहन भी वहां थी, वो कहती है कि महाराज जी ये कहता था इस काम के लिए बहुत कुछ करना है, बहुत भक्त बनाने हैं, ये करना है वो करना है, ये पता नहीं कि शरीर छूट जाएगा। तो ये ना मेरे को पता है ना आपको पता है ना इनको ना इनको, वैसे तो शरीर छूटना है ही, कब छूटना ये किसी को नहीं पता। इसलिए जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम है उस समय का उपयोग मुझे भक्ति वृद्धि में करना चाहिए और अपना निरीक्षण करना चाहिए कि क्या मैं आध्यात्मिक पथ में आगे बढ़ रहा हूं या नहीं बढ़ रहा हूं, ये अवश्य करना चाहिए मुझे। ये कृपया आप सब इसको लो, हम सब निरीक्षण करें, क्योंकि जैसे अभी कपल के कल 13 दिन मनाए गए थे कपल मोहनदास, एक दिन वो भी आ जाएगा, हमारे भी दिन कहने के इतने दिन हो गए, इतने दिन हो गए, हम सबके दिन होंगे एक दिन, क्योंकि मृत्यु तो ध्रुव है, निश्चित है, मरना तो निश्चित है, मृत्यु से तो कोई भी नहीं बच सकता। और मृत्यु जब आती है तो जीव का सब कुछ हरण कर लेती है। हम तो मैं तो चीजों से चिपका हुआ हूं, ये वो दूसरा तीसरा, लेकिन मृत्यु सर्वस हरश्याम, भगवान कहते हैं मैं जब मृत्यु रूप में आता हूं तो सब कुछ हरण कर लेता हूं। तो मुझे खुद ही हर वस्तु का त्याग कर देना चाहिए, पर त्याग कैसे हो, मन जब तक साफ नहीं होगा तो त्याग नहीं हो सकता। और मन की सफाई बड़ी संतान उत्पत्ति से या प्रजापति बनने से नहीं होगी, दक्ष प्रजापति हैं, शंकर भगवान खड़े नहीं हुए, शंकर भगवान से द्वेष कर रहे हैं, वैष्णवानम यथा शंभु, याद रखो हमारे सारे वैष्णवों के सरताज शंकर भगवान हैं, भागवत लिख रहा है, भागवत से बड़ी अथॉरिटी क्या है, भागवत कह रहा है सारे वैष्णवों के सरताज शंकर भगवान है, पर्वत नाम हिमालय, सब पर्वत में हिमालय पर्वत बड़ा है, सब नदी में गंगा नदी महान है, है? तो हमें हमें ये गुण कब आएंगे, जब भक्ति माता की कृपा होगी, शुद्ध भक्ति, अन्नाभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावर्तम, कोई भौतिक इच्छा नहीं, कुछ नहीं। इसलिए भगवान ने कहा ना, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कवितांबा जगदीश कामे, मेरा मन इन सब में लगा हो, मुझे धन भी चाहिए, अनुयायी भी चाहिए, सुंदर स्त्री भी चाहिए, बहुत बड़ा प्रवक्ता भी मुझे बनना है, है? गौर भगवान कह रहे हैं कुछ नहीं चाहिए मेरे को, तुम्हें क्या चाहिए आपको, धन नहीं चाहिए, अनुयायी नहीं चाहिए, सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, बहुत बड़ा आपने प्रवक्ता नहीं बनना, तो फिर आपको चाहिए क्या। मम जन्मनी जन्मनी ईश्वरे भवतात भक्तिर अहि दुखी त्वयि, हे कृष्ण मुझे जन्म जन्मांतर आपकी भक्ति चाहिए। भक्ति कैसी, भक्ति भी कई प्रकार की है, ऐसी भक्ति बिना किसी हित के, मैं आपकी सेवा तो करूं लेकिन बदले में कुछ नहीं चाहिए, तभी मुझे कृष्ण प्रेम मिलेगा। अगर मैंने भक्ति करके कुछ बदले में चाह दिया तो वो मिल जाएगा, लेकिन कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। और कृष्ण प्रेम से ही तो मेरा आवागमन छूटेगा, मुझे कृष्ण मिलेंगे, पर बिना शुद्ध भक्ति है जिसमें कोई भौतिक इच्छा नहीं है। तो दक्ष जी महाराज बड़े चतुर बन रहे हैं, लेकिन चतुराई उनकी जो है ना सामने आ गई, दक्ष जी की चतुराई सामने आ गई, और वो छुपा रहे हैं इस बात को कि कोई गड़बड़ ना हो, गड़बड़ हो ही गई। आदमी का कहते हैं ना कि सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के असूलों से खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से,
सच्चाई को नहीं छुपा सकते, वो सामने आ जाएगी।
चतुर बनते हैं ना, प्रभुपाद कहते हैं ना, जो बड़ा चतुर बनते हैं ना, जैसे कौवे के बारे में कहा है, कौवा कौवा बड़ा चतुर बनता है, लेकिन चतुर बनने का अर्थ क्या है उसका, जो गंदगी का सबसे ऊंचा ढेर है वहां जाके बैठता है, वो चतुर है लेकिन बैठा कहां गंदगी के ऊपर। यही हमारी गति है। और दक्ष महाराज की एक कथा है, क्यों भगवान ने लिखी भगवान वेद व्यास में, ताकि हम मूर्ख इनसे कुछ शिक्षा प्राप्त करें और अपना जन्म सफल करें। जन्म की सफलता केवल कृष्ण भक्ति में है, केवल कृष्ण के शरण में है, केवल श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण करने में है। जन्म की सफलता और किसी चीज में नहीं है, और किसी वस्तु में जन्म की सफलता नहीं है, नहीं है, नहीं है। पर मेरा मन समझता है मेरे जन्म ऐसे सफल होगा, मेरे जन्म ऐसे सफल होगा, मेरा जन्म ऐसे सफल होगा। जैसे ऐसे भी लोग हैं ना जो बड़ा धन इकट्ठा कर रहे हैं, बस मैं अभी मेरे पास 10 करोड़ है, 100 करोड़ हो जाएगा जन्म सफल है, 100 या क्या भी 200 करोड़ हो जाए, अरे 400 करोड़ हो जाए। कभी किसी की लालसा समाप्त हुई? जब तक कहा है ना वो गौ धन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जो आवे संतोष धन सब धन धूल समान। कई प्रकार के धन हैं, गाय का धन, गौ धन, गज धन, हाथी, हाथी बड़ा अमीर आदमी, राजा लोग हाथी रखते थे, और रत्न धन खान जो आवे संतोष धन। और संतोष कब आएगा? जब भक्ति मां की कृपा होगी। जब भक्ति मां कृपा करेंगी तो मेरा मन संतोषी बनेगा। अगर मैं भक्त के भेष में तो हूं पर भक्ति माता की मेरे पर कृपा नहीं है तो संतोष रूपी धन की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो दक्ष जी महाराज चतुराई तो बड़ी की उन्होंने, दूसरे शब्दों में उसे यह पता था कि मैं शिव के विरुद्ध बोल रहा है, वो भी जानता था, लेकिन छुपा रहा अपनी चतुराई से। जो निष्कलंक थे, शंकर भगवान को निष्कलंक कहा है, यहां तक ईर्ष्या द्वेष की बात है, मैं पहले से ही शिव से द्वेष रखता था, फलतः उसने अपने द्वेष को प्रकट नहीं होने दिया। हम भी ऐसा करते हैं ना, केवल हमारे मन में जो द्वेष है उसको हम छुपाते हैं पर प्रकट हो जाता है। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, यह जो दिव्य मार्ग प्रभुपाद ने दिया है इसको हम हृदय से स्वीकार करें, हृदयांगम करें और भक्ति पथ को बड़ी दृढ़ता से स्वीकार करें। और धनम जनम सुंदरम ये मन में इच्छा तो बनाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए हे कृष्ण, मेरा मन तो उन चीजों में लगा है, धन में भी लगा है, अनुयायियों में भी लगा है, स्त्री में भी लगा है, प्रवक्ता बनने में भी लगा है, मुझे तो केवल आपकी भक्ति चाहिए प्रभु। और भक्ति भी ऐसी, मैं सेवा तो आपकी करूं बदले में कुछ नहीं, इच्छा मेरे मन में तो ये सारी गंदगी है, लेकिन मैं ये इच्छा जो करने का प्रयास करूं तो धीरे धीरे मेरे मन में ये गुण आ सकते हैं, उसी में मेरे जीवन की सफलता है। हरे कृष्णा, सबका धन्यवाद। कोई प्रश्न किसी भक्त को या माता को? हाँ बोलिए, माइक दीजिए उनको। बाकी सब कृपया बैठिए, थोड़ा प्रश्न क्या है उत्तर क्या है थोड़ा सुनिए, सारे भक्त लोग संयम बरतिए, बैठिए। हाँ जी
महाराज जी, बहुत सुंदर आपने बताया, बहुत ही अच्छा लगा।
अगर सुंदर बताया आपको अच्छा लगा ये इनकी कृपा है जो यहाँ विराजमान है। अगर कहीं कहीं गड़बड़ है तो वो हमारी कृपा है। वैसे हम तो गड़बड़ी बोलते हैं पर ये कभी कभी कृपा कर देते हैं तो उनकी कृपा से बोल पाते हैं कुछ। अमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बाली धाई तब पाछे पाछे।
महाराज जी जैसे आपने इंसिडेंट बताया कि प्रभुपाद जी के पास जब आप गए तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ये दो चीजें जो हैं काम और
ईर्ष्या
ये हैं जो मापदंड जो बताएंगे। तो काम के बारे में तो पता लगता है लेकिन ईर्ष्या के बारे में तो बहुत सूक्ष्म है। ईर्ष्या के बारे में तो कई बार नहीं पता लगता। जैसे दक्ष इसमें ईर्ष्या कर रहा है लेकिन उसको लग रहा है कि मैं ईर्ष्या नहीं कर रहा, मैं तो ठीक बात बोल रहा हूँ।
नहीं नहीं उसे पता था पर मन बड़ा मलिन है ना। कहां अच्छा आपका प्रश्न मैं समझ का उत्तर दूं। देखिए ऐसा है कृष्ण प्रिया जी, वैसे काम ही सारी बीमारियों की उपज है, ईर्ष्या भी काम से ही आ रही है। भगवान ने कहा ना तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में काम ईर्षा क्रोध ईर्षा रजोगुण समुद्भवा महत्सनो महत्पापा विधि ये नमी बैरि नाम। अर्जुन ने प्रश्न किया ना श्री अर्जुनो वाच अथ केना प्रयुक्तोयम पापम चरिति पुरुषः अनिच्छन्नपि वर्षण्य वलादिवा निरोधिता। तो भगवान कहते काम जो है ना इस संसार का सर्वथ पापी शत्रु है। भगवान कह रहे हैं सारे दोष इसी से आ रहे हैं। और ये क्या काम क्या है ये प्रभुपाद बड़े सुंदर ढंग से समझा रहे हैं। ये कृष्ण प्रेम का विकृत रूप है। जैसे दूध में इमली डालो तो प्रभुपाद समझा रहे हैं वो दही बन जाता है। दही कुछ नहीं बल्कि दूध है लेकिन दही से दूध का काम नहीं लिया जा सकता। दूध और दही नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। इसी प्रकार ये काम कुछ नहीं बल्कि कृष्ण प्रेम का विकृत रूप है। शाश्वत कृष्ण प्रेम जब हम भौतिक जगत के संपर्क में आए उसने काम का रूप धारण कर लिया और काम का रूप जब धारण कर लिया तो बस काम से क्रोध मोह लोभ है। लोभ जो है वो पाप का बाप है। फिर अहंकार वो सारे दोष आ गए। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मद मत्सर ईर्ष्या दंभ कपट बहुत कुछ आ गया। बस सारी बीमारियां काम से शुरू हुई। ईर्ष्या भी काम से आई पर ईर्ष्या ऐसी है ना मैं बड़ा बनूं मैं बड़ा प्रवक्ता बनूं पर बाकी सब मरे और किसी को प्रवक्ता नहीं बनना है। मेरा बड़ा नाम हो ये क्या ईर्ष्या है और क्या है। मैं बड़ा बनूं और बाकी सब मरे वो क्या पता तू पहले मरेगा बाकी बाद में मरेंगे ये पता थोड़ा कि ये सब दोष है। तो जैसे रामायण में बड़ा सुंदर कहा है रामचंद्र भगवान कह रहे हैं। मैंने अभी तुलसीदास जी का चरित्र पढ़ा प्रभुपाद ने कुछ बातें बताई थी। तुलसीदास जी बड़े चमत्कृत सत्य हुए हैं पर उन रामायण में एक बात भी लिखी गई है जो सिद्धांत के विरुद्ध है। तो डिस्कशन में एक ने कहा हो सकता किसी ने ऐड कर दी हो बीच में ऐसा दो अभी ऐड भी तो कर सकते हैं ना। नहीं तो तुलसीदास जी बड़े चमत्कारी संत थे और बड़े भगवान में मानने वाले थे। कुछ ऐसे बातें जिन्हें मायावाद का पुट है वो कुछ है ऐसे दोहे। तो
निर्मल मन जन सोई मोहे पावा मोहे कपट छल छेद्र न भावा।
भगवान कह रहे हैं रामचंद्र जी कह रहे हैं निर्मल मन जिसका मन निर्मल है वही मुझे पा सकता है। मोहे कपट छल छिद्र न भावा जिसके मन में कपट छल छिद्र है वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ईर्ष्या का मतलब ये कपट है ईर्ष्यालु आदमी। अरे सभी भगवान के हैं हर जीव तो परमात्मा का है इसलिए प्रभुपाद में कोई ईर्ष्या नहीं थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदुस्तानी अपने और पाकिस्तानी अपने नहीं है। बोल जाओ पाकिस्तानी मुझे कहा था प्रभुपाद ने कि नब युविंदर आई वॉन्ट यू टू गो टू पाकिस्तान मुझे कहा था मैं जा नहीं पाया। प्रयास किया हूं कि आ गया पालन के लिए मैं यही गया था एम्बेसी में वीजा ही नहीं दिया मेरे को पाकिस्तान का। उन्होंने प्रयास किया मैं उनसे सच्चा हूं तो सारी दुनिया में प्रचार किया, तो सब भगवान के तो ईर्षा भी हमें दिखती है। अगर मन में बोझ है तो ईर्षा है ना, मुझे अगर किसी की उन्नति नहीं दिख रही तो ये ईर्ष्या और क्या है। अगर कोई प्रगति कर रहा है आध्यात्मिक जीवन में, मुझे प्रसन्नता होनी चाहिए, और भाई ये कितना अच्छा भक्त है, इसका मतलब मुझ में ईर्ष्या नहीं है। अगर कोई प्रगति कर रहा है, मैं कहता हूं ये प्रगति क्यों कर रहा है, ये इसको मर जाना चाहिए था। यही ईर्ष्या है। ईर्ष्यालु व्यक्ति भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। प्रश्न का उत्तर मिला आपको, धन्यवाद आपका। और कोई प्रश्न किसी को? हाँ जी, एक उनको माइक ले लीजिए। प्रश्न पूछने से पहले अपना नाम बता दिया करें। उधर हरि बोल, उन्होंने हाथ खड़ा किया था पहले।
हरे कृष्ण महाराज, महाराज दमन प्रणाम आपके चरणों में। महाराज मेरा नाम है सुदामा विप्रदास।
सुदामा विप्रदास, सुदामा विप्रदास, बोलिए सुदामा विप्र जी।
महाराज आपने दो दिन पहले भी लेक्चर दिया था, तो उसमें आपने बताया था कि हम मृत्यु के निकट हैं।
हम
मृत्यु के निकट हैं,
बिल्कुल।
आज भी आपने लेक्चर में यही बताया कि हम मृत्यु के निकट हैं। तो महाराज अभी हम मंदिर में बैठे हैं, टेम्पल हॉल में बैठे हैं, तो हमें ये याद रहेगा।
धीरे धीरे बोलिए।
अभी हम यहाँ टेम्पल हॉल में बैठे हैं तो हम इसको याद रख पाएंगे, लेकिन अफसोस की बात जैसे यहाँ से बाहर निकलते हैं ये एकदम भूल जाते हैं। तो महाराज ऐसे कैसे होगा कि इसका स्मरण हम रख पाएंगे हमेशा?
तो आप प्रयास से मंदिर के वातावरण में ही रहो, बाहर नहीं निकलो। प्रभुपाद जी ने इतनी कृपा करके जगह जगह केंद्रों की स्थापना की, इसलिए प्रभुपाद ने कहा ना, और महाप्रभु ने भी कहा, साधु संग सर्व शास्त्र कहे। यहां आपको याद रहेगा क्योंकि यहां भगवान विराजमान है, ललिता विशाखा राधा पार्श्वती सीताराम लक्ष्मण हनुमान गौर निताय विराजमान है, प्रभुपाद जी विराजमान है। तो भक्तों के संग में याद रहेगा, इसलिए हमको भक्तों के संग में रहने का ही प्रयास करना चाहिए। और नित्यानंद भगवान ने भी कहा है, कृष्णेरा संसार करो छाड़ी अनाचार, जीव दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कृष्ण का संसार करो, भक्त बनो, भक्त बनाओ, अनाचार को भक्ति के अलावा जो भी है सब अनाचार है, दुराचार है, बेकार है, उसी वातावरण में आप रहो तो जीवन धन्य होगा। बाकी बार रखा क्या है, बार कुछ नहीं है, सब कुछ इनके चरणों में है, राधा पार्थी के चरणों में है, राधा पार्श्वती के चरणों में है।
धन्यवाद,
धन्यवाद।
हरे कृष्ण महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका प्रवचन का।
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
मेरा नाम अक्षय केशव दास है महाराज।
कौन से केशव?
अक्षय केशव दास,
अक्षय केशव।
और महाराज जी आपके जब भी प्रवचन होते हैं यहाँ पर मंदिर में टेम्पल हॉल में, तो हमें बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि आप विशेषकर जिन विषय पर चर्चा करते हैं वो ईर्षा, देश, काम, इन सब में भरा होता है, इन सब के ऊपर होता है ये आपका प्रवचन। और दो दिन पहले भी जो आपने प्रवचन किया था उसमें भी आपने काफी चर्चा करी थी द्वेष की और काम की, और आज भी आपने काफी काम के बारे में बताया। और महाराज आज के लेक्चर में आपने बताया कि कई योनियों में हम भ्रमण करते हुए आ रहे हैं और उन सब में हमने इंद्र तृप्तियां किया है, तो स्वाभाविक है कि हमारे इंद्र तृप्तियों के प्रति हमारा आकर्षण रहता।
थोड़ा थोड़े धीरे धीरे बोलिए, जल्दी बोल रहे हैं।
तो हमारा मेरा प्रश्न ये है कि क्योंकि हम हर योनियों में इंद्र तृप्ति करते आए हैं और इस जीवन में भी हम इंद्र तृप्ति काफी
ऐसी हमारी प्रवृत्ति बनी हुई है,
और संस्कार के बारे में भी आपने चर्चा की थी कि हमारे जो संस्कार है बहुत प्रभावशाली होते हैं, तो कैसे हमारे संस्कार, जो हमारे पूर्व संस्कार है वो काफी प्रभावशाली है, तो कैसे इस काम की इच्छा से जो अट्रैक्शन होता है अपोजिट सेक्स के प्रति, कैसे महाराज इसे बचे और क्या विचार रखें, जब ये विचार मन में आता है तो कैसे इसको डिफीट करें?
देखो ऐसा है, जब तक हमारी पूर्ण शुद्धि नहीं होती ना,
तो ये विचार आते रहेंगे, लेकिन हमें प्रयास करना है। छठे अध्याय में अर्जुन ने भी ऐसे प्रश्न किया था भगवान को, ये सब मन की चंचलता है जो आप कह रहे हैं ना, मन इस विचार में बुराई की तरफ जाता है, जब के बुद्धि कहती है ये तो बुरा है, लेकिन मन इतना प्रबल है कि बुराई की तरफ वो जाता ही जाता है। इसका उत्तर भगवान ने दिया, अर्जुन जी ने प्रश्न किया, अर्जुन ने प्रश्न किया, चंचलम ही मना कृष्णा परमाथी बलभद्रम तस्या हम निगर हम मन ने वायुर एव स दुष्करम। हे कृष्ण, वायु को कोई भले वश में कर ले पर ये मन वश में नहीं होता, बड़ा चंचल है, बड़ा दुराग्रही है। तो भगवान ने क्या कहा, भगवान ने भी इस बात को स्वीकार किया, संशयम महाबाहो, ये शक्तिशाली अर्जुन बड़ा कठिन है मन को वश में करना, मनोद्रुणी ग्रहम चलम, बड़ा दुराग्रही है ये। अब दो शब्द जो भगवान ने कहे हैं, कृपा करके मैं भी याद रखने का प्रयास करता हूं, आप सब याद रखें, अभ्यास ही ना तो कौन तैयार वेरा गेना चक्रिय थे, दो बातें भगवान ने कही हैं। मान लो मैं भी यहां भगवान के चरण में बैठा हूं, मन मेरा पापी कहीं और गंदगी की तरफ जा रहा है, ये जब जाएगा खेच कर मैंने फिर उसको यहां लाना है। मैं जब छोटा था ये शरीर एक महात्मा जी के पास गया तो मैंने भी ये प्रश्न किया था उनको, तो उन्होंने ये कहा कि मन तुम्हारा अगर किसी बुराई की तरफ जाता है इसको जाने दो, पर तुम मत जाओ वहां पर, तुम नहीं जाओगे तो ये घूम फिर के वापस आ जाएगा। अगर हम नहीं गए जहां ये जा रहा है तो क्या करेगा हमारे बिना, ये वापस आ जाएगा। तो परम पिता ने ये कहा है, वो संत उनका नाम नंद बाबा उनका नाम था, बचपन में वहीं उन्हीं के वहां से ही मुझे ये महामंत्र भी प्राप्त हुआ था, वो निम्बार्की थे पर ये महामंत्र जपते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम। तो भगवान ने कहा कि अभ्यास, जब तक ये शुद्ध लोग से जाते रहना है, लेकिन हमने इसको बार बार हरि चरणों में लाते रहना है। एक बड़ा सुंदर दोहा कहा है, करत करत अभ्यास से, करत करत अभ्यास से चरमती हो तो सुजान, रस्सी आवत जात से शिला पड़त निशान। कुएं के ऊपर जो है ना रस्सी से पानी निकाला जाता है, कुएं से रस्सी तो नरम है लेकिन पत्थर को बार बार रस्सी रगड़ रही है, उसमें शिला पड़त निशान, पत्थर पर निशान पड़ जाता है अभ्यास। तो आपने अभ्यास और विराग अभी है नहीं मेरे मन में, हम सबके मन में नहीं है, मेरे मन में तो है ही नहीं, लेकिन इसको लाने का प्रयास करना है। इसने बुराई की तरफ जाना है, मैंने इनको हरि चरण में लगाना है, फिर चले जाओ फिर लाना है, फिर गया लगा लगी रहना है बस, और फिर मन में विराग, मेरा तो कुछ भी नहीं, मेरा बाप मर गया, मेरा चाचा मर गया, मेरा ताऊ मर गया, मेरी चाची मर गई, मेरी ताई मर गई, मेरे भाई मर गए, कई रिश्तेदार मर गए, कुछ नहीं ले गई, मैं क्या ले जाऊंगा, ये मेरे मलिन मन की भड़कना है। अभ्यास और विराग ये भगवान का सुझाव है। हताश नहीं होना, लगे रहना है, इनकी कृपा से, ऐसे संतों की कृपा से धीरे धीरे मन रस्ते में आएगा। और ये भी कहा है ना, चुटकी बजाने से सब कुछ नहीं हो जाता, हम ये सुन, मन बड़ा चंचल है ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सौ घड़ा ऋतु आए फल हो। उसको बड़े सिंचना पड़ता है, पालना करना पड़ती है, समय आने पर उसको फल लगता है। मैं कहूं आज मैं कर रहा हूं तो कल फल लग जाए, वो नहीं होगा। देखो प्रभुपाद ने उनके ग्रंथों से पता लग रहा है, उनके लेक्चर से एक जगह लिखा है प्रभुपाद ने, वो उनको दोहा बड़ा अच्छा लगा, मैं भी सोचता मुझे दोहे कहा है ना कि ये दोहा जो प्रभुपाद को अच्छा लगा कोट किया उन्होंने, सुख में सिमरन सब करे
दृष्टि मेरे में सब करे और सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे दुख का हे को हो।
प्रभुपाद कहते वेरी गुड, बहुत अच्छा।
अगर हम हर समय भगवान को याद रखें कि मैं दुख आएगा ही क्यों, दुख में तो हम याद करते हैं
सुख में भूल जाते हैं। तो अभ्यास और वैराग, ठीक है, धन्यवाद।
और किसी का हाथ खड़ा नहीं यहां, एक इनका हाथ खड़ा है, थोड़ा इनका भी प्रश्न सुन लीजिए। हरि बोल ब्रह्मचारी जी, थोड़ा बैठे बैठे भाई। हाँ
स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपका बहुत अच्छा प्रवचन था, इसे सुन के बहुत लाभ मिला, आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। स्वामी जी क्वेश्चन ये है कि विपरीत समय में
विपरीत समय में
हाँ जी, खराब समय में प्रभु पर विश्वास कैसे बनाए रखा जा सकता है और भक्ति माता की कृपा पाने के लिए क्या करना चाहिए?
ये जो मैंने उनको उत्तर दिया, ये विपरीत समय में विपत्ति के समय में ना, वो जो विपत्ति आ रही है मेरे कर्मों का ही खेल है, वो मेरे मलिन मन की देन है। अगर मेरे पर कोई मुसीबत आ गई ना, तो मेरे मलिन मन ने बुरे कर्म किए तो मुसीबत आ गई, तो उसमें यही प्रयास करना है भगवान का स्मरण करें और इस पापी मन को हम समझें कि ये जो मेरे सामने परिस्थिति आई है ये मेरे मन ने ही इसको खड़ा किया है। जैसे चोर पर एक विपत्ति आ गई तो पुलिस मार रही है उसको, पुलिस अगर वो चोरी नहीं करते तो मारती उसको, नहीं मारती ना, उसने खड़ी की है। एक तो उस पापी मन को समय समझा जाए, जब विपत्ति आती है तो ये पापी मन ही दुखी होता है, यही दुखी होता है ना, और किया भी इसने ही है, उल्टा काम इसी ने किया है। तो इसलिए हमको इस मन को उसमें समझाने का प्रयास करना है और प्रयास बार बार करना है, अभ्यास करना है, हरि चरणों में लगाने का और विराग का सोचना है कि कुछ मेरा नहीं है। इस मन ने तो ये सोच रखा था मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरी कार, मेरा बंगला, मेरा ये, मेरा वो, मेरा तो शरीर भी नहीं है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। ये मन मन समझ रहा है ना, जब तक ये शुद्ध नहीं है तो मैं कर रहा है, और इसको शुद्ध करने का प्रयास करना है, उसी में कल्याण है। समझाइए आपको।
हाँ जी, और भक्ति माता की कृपा पाने के लिए क्या करना चाहिए?
कृपा नाम जपना है, भक्ति करनी है, कृपा आएगी, धीरे धीरे आएगी। जब हम भगवान का सतत चिंतन करेंगे, सततम कीर्तयन्तो माम ये जना परिपासते तेषम नित्याम युक्ता नाम योग क्षेम महामियम। भगवान पर ध्यान करते हैं, जो हमारे पास है उसकी रक्षा करते हैं, जो नहीं है वो देते हैं। बस इसके लिए सतत कीर्त और भक्ति भगवान के नियम से करनी है, ठीक है।
और स्वामी जी एक चीज और, दूसरों के दोष नहीं देखने के लिए क्या करना चाहिए?
बस भक्ति करनी है, जब भक्ति पड़ेगी तो दूसरों के दोष नहीं दिखेंगे मेरे को। अगर मैं भक्त नहीं हूं तो फिर अभक्त हूं, दुष्ट हूं, तो दूसरों के दोष ही दोष दिखेंगे मेरे को। धन्यवाद। अभी टाइम बड़ा हो गया, धन्यवाद। सब मेरे पीछे बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा,